पिछले अंक में हमने बात की थी मधुशाला में लाइफ इज ए लॉन्ग वीकेंड की फिलॉसफी कैसे दिखाई देती है, बच्चन जी के जीवन में सुख और दुख के साथ में आने की बातें, और वो मधुशाला की कविताओं में कैसे झलकती हैं। आज सुनाते हैं कहानी कि मधुशाला को किताब के रूप में आने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे। जैसा कि हमने एपिसोड 3 में बताया था, कैसे बच्चन बाबू ने पायोनियर प्रेस में गश्ती एजेंट का काम करते हुए मधुशाला की एक एक चतुष्पदी लिखी थी। अब इस नौकरी के बाद उन्होंने अभ्युदय नाम की एक प्रेस में काम करना शुरू किया। तब तक बच्चन साहब मधुशाला को कई कवि गोष्ठियों में सुना चुके थे और इसकी कुछ चुनिंदा रुबाइयां यानी चतुष्पदियां कुछ पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई थी। अभ्युदय प्रेस के मालिक थे एक मालवीय साहब, मदन मोहन मालवीय नहीं, ये अलग मालवीय थे। उन्होंने बच्चन बाबू को प्रस्ताव दिया कि उनकी प्रेस में मधुशाला को मुफ्त में प्रकाशित करवा देंगे, किंतु रॉयल्टी देंगे कुछ हजार प्रतियां बिकने के बाद ही। क्योंकि बच्चन साहब मालवीय जी की नौकरी कर रहे थे तो अपनी शर्तें तो क्या ही रखते, फटाफट तैयार हो गए। अब मालवीय जी ने प्रकाशित करने का वादा तो कर दिया, मगर फिर दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने निकल गए और प्रकाशन का नामोनिशान नहीं। बच्चन जी जब भी पूछते तो हमेशा कोई ना कोई बहाना, कभी प्रेस खराब, कभी अच्छे कागज की कमी, फलाना फलाना। अब कविराज को लगने लगा कि ऐसे तो मधुशाला प्रकाशित होने से रही। तब उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ सलाह मशवरा किया और कानूनी सलाह भी ली। फिर तय हुआ कि पहले मालवीय साहब को एक लीगल नोटिस भेजा जाए कि अगर फला तारीख तक मधुशाला प्रकाशित नहीं हुई तो बच्चन जी स्वतंत्र होंगे इसे कहीं और से प्रकाशित करवाने के लिए। लीगल नोटिस भेज दिया गया और साथ ही साथ बच्चन जी ने अपने ही बूते पर मधुशाला को किताब के रूप में छापने की तैयारियां भी शुरू कर दी। किश्तों पर कागज जुटाए गए और जो उनका पुराना विद्यालय था अग्रवाल विद्यालय, वहां की एक प्रिंटिंग प्रेस को इस्तेमाल करने की बात हुई। और क्योंकि बच्चन जी के पिताजी खुद एक प्रेस में काम कर चुके थे तो ऑपरेशंस का काम देखने लगे, और छोटे भाई शालिग्राम, उनको बैंक का अनुभव था, उन्होंने रुपये पैसे का काम देखा। इसी बीच लीगल नोटिस की तारीख भी निकल गई और तब तक बच्चन जी अपने बूते पर जो जोड़ तोड़ का जुगाड़ करके किताब छापने का प्रबंध कर चुके थे, उनके परिवार ने इस प्रकाशन संस्था को नाम दिया सुषमा निकुंज। और मधुशाला की पहली प्रति एक पॉकेट बुक की शक्ल में सुषमा निकुंज प्रेस से ही प्रकाशित हुई। यहीं से किताब के रूप में मधुशाला की यात्रा प्रारंभ हुई और आगे जाके इसी प्रेस से मधुबाला और मधुकलश भी प्रकाशित हुई। एक दिलचस्प किस्सा ये है कि बच्चन साहब जब पहली छपी कुछ प्रतियां लेकर जा रहे थे, मधुशाला की पहली प्रतियां, तो रास्ते में एक परिचित मिले। बच्चन साहब ने उन्हें एक प्रति भेंट करनी चाही तो उन्होंने कहा कि मुफ्त में तो नहीं लेंगे, कहते हैं कि मुफ्त की शुरुआत अच्छी नहीं होती। उन्होंने पूरी कीमत देकर बच्चन बाबू से बाकायदा किताब खरीदी और दुआ दी कि इसकी लाखों लाख प्रतियां बिकें। और देखिए हुआ भी ऐसा ही, लाखों छोड़िए, 8 दशक के बाद आज ये किताब किंडल पर भी उपलब्ध है, ऑडियो में भी उपलब्ध है, इसके कितने ही ऑडियो बन चुके हैं, एल्बम बन चुकी है और किताब आज भी बराबर खरीदी जा रही है। कभी ना कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। यानी ये पुस्तक तो ऐसी मधुशाला है, ऐसा मदिरालय है कि लाखों लाख पीते जाएं तो भी खाली नहीं होगा, बल्कि और भरता जाएगा। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कविसा की बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। यानी कवि ने अनुभवों और भावुकताओं की अंगूर लताओं से खींचकर ये जो हाला तैयार की है, कल्पनाओं की हाला, इसी को कवि ने कविता के प्याले के रूप में प्रस्तुत किया है। और कवि स्वयं वो एक साकी की तरह है जो ये प्याला लेकर आता है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कविसा की बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी ना कण भर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए। कभी ना कण भर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए। पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। कभी ना कण भर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए। पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। मधुशाला तो अनुभवों, कल्पनाओं, भावनाओं, इन सबके निचोड़ से बनी हुई प्रेम मदिरा है। ये कैसे खत्म हो सकती है? जब तक लोग अपने खट्टे मीठे जीवन अनुभवों की झलक इसके प्यालों में देखते रहेंगे, ये हाला यूं ही छलकती रहेगी। जैसे बच्चन जी के मित्र मनोरंजन प्रसाद जी ने भी कहा था, जो हमने मधुशाला के पहले एपिसोड में सुनाया था, भर भर कर दे ताजा साकी, मैं कर दूंगा दीवाला, अजब शराबी से तेरा भी आज पड़ा आकर पाला। भर भर कर दे ताजा साकी, मैं कर दूंगा दीवाला, अजब शराबी से तेरा भी आज पड़ा आकर पाला। लाख पिए दो लाख पिए, पर कभी नहीं थकने वाला। लाख पिए दो लाख पिए, पर कभी नहीं थकने वाला। अगर पिलाने का दम है तो जारी रखें मधुशाला। लाख पिए दो लाख पिए, पर कभी नहीं थकने वाला। अगर पिलाने का दम है तो जारी रखें मधुशाला। शुरुआती वक्त में मदिरा की प्रशंसा के लिए लोगों ने मधुशाला की खूब निंदा आलोचना की, यहां तक कि बच्चन जी को गोली मारने की धमकी भी मिली थी। मगर साथ ही कुछ लोगों ने इसमें सूफीवाद और जीवनवाद की झलक भी देखी, जैसे हर रुबाई किसी ना किसी की अपनी ही कहानी हो। और आगे भी कुछ इसी तरह कहा है, मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूं हाला। मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूं हाला, भरता हूं इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला। भरता हूं इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला। पिछली कविता जैसी बात है कि जो मेरी मधुर भावनाएं हैं, जो मेरे जीवन अनुभव हैं, उनसे मैं नित्य एक मीठी सी मधुर हाला बनाता हूं, और हाला की इसी मधुरता से, इसी मिठास से मैं अपने अंतर का प्यासा प्याला भरता हूं। अब जैसे बच्चन जी अक्सर कहते हैं, कलाकार या कवि एक कला की रचना सबसे पहले अपने सुख के लिए करते हैं। जैसे तुलसीदास भी कह गए, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इसीलिए कवि ने कहा कि इस मधु से मैं अपने अंतर का प्यासा प्याला भरता हूं, अर्थात मैंने ये कविता अपने सुख के लिए लिखी है। भरता हूं इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला। उठा कल्पना के हाथों से स्वयं उसे पी जाता हूं, अपने ही मैं हूं मैं साकी, पीने वाला मधुशाला। उठा कल्पना के हाथों से स्वयं उसे पी जाता हूं, अपने ही मैं हूं मैं साकी, पीने वाला मधुशाला। अब यहां दो तीन बातें कह दी कविराज ने। एक तो ये कि लोग भले ही कुछ भी कहते रहें, हम अपने मन की भावनाएं मधुर ही रखें और वो ही हमारे शब्दों में, हमारी कविताओं में, हमारे जीवन में झलकें, जैसे कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड। और दूसरा पहलू ये भी है कि जब आप अपने में ही खुश हों तो बाकी चीजों से क्या लेना देना। लाइक बीइंग हैप्पी इन लॉकडाउन आइसोलेशन, वॉन्ट्स वर्सेज नीड्स की लड़ाई। लॉकडाउन के दौरान देख लिया कि कितने थोड़े में गुजारा चल सकता है। इस कविता में कल्पना की बात भी आई है, तो बताते चलें कि कविताएं जो होती हैं वो यथार्थ और कल्पना के बीच एक सेतु का काम करती हैं। सेतु यानी पुल, ब्रिज, और सेतु के रूप में ये प्राकृतिक या ऑर्गेनिक रिश्ता स्वयं कवि बनाता है। मधुशाला के शुरुआती दिनों की बात है, बच्चन साहब ने एक बार कहा था, मैं ही वक्ता हूं, मैं ही श्रोता हूं, या ये कहें कि ये अकेलेपन की अभिव्यक्ति है। और ये बात हुई जब एक बार कविता पाठ करके कविराज अपने कमरे में आए और बड़ा उदास हो गए। शायद कविता से कुछ भावनाएं जागी हों जो बेचैन कर गई। कवि के शब्दों में, कविता पाठ के समय लगा कोई और सुना रहा है और मैं सुन रहा हूं, किंतु अकेले में मैं ही श्रोता हूं, मैं ही वक्ता हूं। अपने ही मैं हूं मैं साकी, पीने वाला मधुशाला। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी वो भी कुछ ऐसा ही कहते हैं कि जब आप किसी त्रासदी या ट्रेजेडी से बाहर निकले हों, आपके आसपास एक सपोर्ट सिस्टम जैसा होता है, परिवार, पड़ोसी, मित्र, सहकर्मी, आपके कलीग्स, या आप काम में मन लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही रात को आपका सर तकिए को छूता है, आप सोने जाते हैं, तब आप अकेले होते हैं, और नींद में तो अकेले ही जाना होता है। उस समय सिर्फ आप हैं, कहने वाले भी और सुनने वाले भी, नींद भी आपकी, सपने भी आपके, और अकेलापन भी आपका। अकेलेपन से निकलने के लिए इस पॉडकास्ट को साथ साथ सुनते हैं। आज यहीं विराम, अगले अंक में सुनेंगे एक किस्सा कर्ण और अर्जुन का, और एक कहानी यिन यांग की, कि कैसे विज्ञान में अमेज़न के घने जंगलों की बारिश और सहारा रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल का एक दूर का लेकिन गहरा रिश्ता है। मैं हूं अरिसुदन, और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की, उससे जुड़े कुछ किस्से कहानियों की, जीवन अनुभवों की और कुछ भावार्थों की। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा, और अकेलेपन को दूर करने के लिए एक बार फिर से मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, चाय कॉफी पीते रहें।